नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो के इस नए साल के पहले एपिसोड में। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ नए तरीके से करते हैं। प्लीज अलाउ सम गुड लाफ्टर विद दिस म्यूजिक। यस फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने डिस्कोर्स शून्य के पार वॉल्यूम नंबर 4 से लिया है, जिसमें ओशो कर्म योग पर बोलते हुए हमें मोमेंट टू मोमेंट जीने के लिए इशारा कर रहे हैं। Thank you.
योग पर आज थोड़ी बात करनी है। बड़ी से बड़ी भ्रांति कर्म के साथ जुड़ी है और इस भ्रांति का जुड़ना बहुत स्वाभाविक है। मनुष्य के व्यक्तित्व को दो आयाम में बांटा जा सकता है। एक आयाम है बीइंग का, होने का, आत्मा का, और दूसरा आयाम है डूइंग का, करने का, कर्म का। एक तो मैं हूं और एक वो मेरा जगत है जहां मैं कुछ करता हूं। लेकिन ध्यान रहे, करने के पहले होना जरूरी है और ये भी ख्याल में ले लेना आवश्यक है कि सब करना होने से निकलता है, करने से होना नहीं निकलता। करने के पहले मेरा होना जरूरी है, लेकिन मेरे होने के पहले करना जरूरी नहीं। कर्म जो है वो परिधि है, अस्तित्व जो है वो केंद्र है। अस्तित्व आत्मा है, कर्म हमारा जगत के साथ संबंध है। ऐसा समझिए, एक सागर पर बहुत लहरें हैं, सतह पर बहुत हलचल है, लहरें उठती हैं गिरती हैं। ये लहरों का जो फैला हुआ जाल है ये कर्म का जाल है। सागर सतह पर बड़ा कर्मरत है, लेकिन नीचे उतरे तो सन्नाटा है, और नीचे जाए तो बिल्कुल सन्नाटा है, और नीचे जाए तो कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, गहरी चुप्पी। सागर की लहरों के नीचे सागर का होना, होना गहरे में, कर्म का जाल, लहरों का जाल ऊपर परिधि पर। प्रत्येक व्यक्ति की परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर कर्म का जाल और प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र पर होने का सागर। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका होना दिखाई नहीं पड़ता, उसका करना ही दिखाई पड़ता है। होना दिखाई पड़ भी नहीं सकता। सागर के पास जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि सागर दिखाई पड़ रहा है, सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ती है सिर्फ लहरें। सागर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ा होगा, लहरें ही दिखाई पड़ी। लहरें सागर नहीं है, क्योंकि कोई लहर सागर के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती। अगर हम लहर को सागर से अलग बचाना चाहें तो लहर मर जाए, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता? सागर बिना लहर के मर नहीं जाएगा, इसलिए मूल सागर है, लहर बाय प्रोडक्ट है, लहर उप उत्पत्ति है। इसलिए लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। कर्म नहीं हो सकता बिना आत्मा के बिना, लेकिन आत्मा बिना कर्म के हो सकता है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे सब कर्म खो जाएंगे, लेकिन मेरे सब कर्म खो जाए तो भी मैं नहीं खो जाता हूं। इस बुनियादी भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो मैं हूं वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप जो हैं वो मुझे दिखाई नहीं पड़ते, आप जो करते हैं वही दिखाई पड़ता है, मैं जो करता हूं वही दिखाई पड़ता है। करना दिखाई पड़ता है, होना छिपा है। करना दृश्य है, होना अदृश्य है। करना ज्ञात है, होना अज्ञात। हमारे भीतर ये दो दिशाएं हैं, एक करने की, दृश्य की, लहरों की, जो दूसरों को दिखाई पड़ सकेगा, ज्ञात हो सकेगा, और एक होने की, जो किसी को ज्ञात नहीं हो सकेगा, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ सकेगा, जो सदा छिपा है, सदा पीछे गहरे में, दी हिडन, वो सदा पीछे छिपा है गुड़। ये दो हमारी दिशाएं हैं होने की अस्तित्व की। इन दोनों दिशाओं में कौन मूल है इसे अगर हम न पहचान पाए तो बहुत भूल हो जाने की, क्योंकि ये बड़े नियम की बात है कि गुण के द्वारा मूल को नहीं पाया जा सकता, मूल के द्वारा गुण को पाया जा सकता है। जैसे कि हम गेहूं बो देते फिर गेहूं की फसल आती और गेहूं के साथ भूसा भी आता है, भूसा मूल नहीं है, परिधि बाहर की खोल, गेहूं मूल है, भीतर का छिपा हुआ हिस्सा है। गेहूं के साथ भूसा पैदा होता है, लेकिन अगर आप भूसा बो दें तो गेहूं पैदा नहीं होगा। गेहूं बो दें भूसा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, लेकिन भूसा बो दें तो गेहूं तो आएगा ही नहीं, भूसा भी नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का कर्म जो है वो भूसे की तरह और मनुष्य का होना जो है वो गेहूं की तरह। अगर भीतर होना है तो कर्म बदल जाएगा, जैसा होना होगा वैसा कर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर से कर्म बदलने तो वैसा होना नहीं बदल जाएगा। मेरा जोर होने पर है, बीइंग पर, लेकिन कर्मयोग का जोर कर्म पर है, बीइंग पर नहीं है, होने पर नहीं है, डूइंग पर। कर्मयोग कहता है करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे। गलत है ये बात, ऐसे हो जाओगे तो ऐसा कर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा करोगे तो ऐसे नहीं हो जाओगे। लेकिन चूंकि दिखाई कर्म पड़ता है इसलिए भ्रांति हो जाती है। कोई महावीर हमारे बीच से निकले तो दिखाई पड़ेगा कि महावीर नग्न हो गए, कर्म है। वस्त्र पहनना एक कर्म है, नग्न हो जाना एक कर्म है। महावीर नग्न हो गए ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा, और फिर दिखाई पड़ेगी महावीर की शांति और महावीर का आनंद और उनके चारों तरफ रहस्य की बहती हुई हवाएं और उनकी आंखों में गहराई, और वो सब दिखाई पड़ेगा। और दिखाई पड़ेगा एक कर्म की महावीर नग्न हो गए। हमारे मन में भी ख्याल हो सकता है कि अगर मैं भी नग्न हो जाऊं तो जो महावीर को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, हम भूसे से गेहूं की तरफ चले। पकड़ लिया हमने कर्म को। महावीर क्या खाते हैं क्या पीते हैं ये कर्म है। देखा कि क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कब खाते हैं कैसे खाते हैं कब नहीं खाते, कैसे चलते हैं कैसे उठते हैं ये कर्म है, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते, ये सब हमने देखा। हमने परिधि को पूरा जांच लिया, हमने कहा कि ये परिधि हम भी पूरी कर ले तो जो इस आदमी के भीतर घटा है वो हमारे भीतर भी घट जाएगा, तो हम भी उठने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, हो जाए नग्न, ये खाए ये न खाए, ऐसे चले ऐसे ना चले, ये हम सब कर ले पूरा। ठीक महावीर जितना करते हैं उतना कर ले पूरा, इंच भर कमी ना रह जाए, तो भी भीतर वो पैदा नहीं होगा जो महावीर के पैदा हुआ, क्योंकि हम उल्टे चल पड़े। घटना को हमने उल्टा देखा, महावीर के भीतर पहले कुछ भीतर हुआ है और तब बाहर फैला है, हमने बाहर से पकड़ा और भीतर चले, भीतर से बाहर की तरफ आ सकते, बाहर से भीतर की तरफ ले जा सकते। बाहर भूसा है, भीतर गेहूं। महावीर की आंखों में जो शांति दिखाई पड़ती है, महावीर के अस्तित्व में जो निर्मलता दिखाई पड़ती है, उनके होने में जो एक इनोसेंस, एक निर्दोष सागर है, वो पहले है। चूंकि भीतर एक निर्दोष होने का जन्म हो गया है, इसलिए बाहर वे नग्न हो सके, भीतर की निर्दोषता बाहर की नग्नता बन सकी, लेकिन बाहर की नग्नता भीतर की निर्दोषता नहीं बन सकती। इसे जितना हम ठीक से समझ लें उतना ही सत्य की दिशा में गति करना आसान हो जाएगा, बड़े से बड़ा उलझाव इससे पैदा होगा। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, वो कभी भी नहीं पूछते कि हम क्या हो जाएं, वे पूछते हैं हम क्या करें। मैं भी एक गांव में ठहरा था, गांव का कलेक्टर मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं भी आप जैसी चादर अगर पहन लूं कुछ लाभ होगा। कुछ भी लाभ नहीं होगा, चादर को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कहने लगा नहीं आप मजाक करते हैं, मुझे ठीक से बताएं, आप उठते करते हैं, आप खाते क्या है? मैं भी वैसा ही करूं। वो आदमी जिज्ञासु है, खोजता गलत छोर से खोज रहा है, लेकिन हजारों साल से मनुष्य जाति गलत छोर से खोज रही, वही आदमी कसूरवार नहीं। और स्वाभाविक है ये भूल, ये इसलिए स्वाभाविक है कि कर्म दिखाई पड़ता है, होना दिखाई नहीं पड़ता है। करीब भी क्या कोई, जो दिखाई पड़ता है उसी से चलने की बात ख्याल में आती, जो नहीं दिखाई पड़ता वहां से चले कैसे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि जो दिखाई पड़ता है वो तरंगे हैं बाहर की, अब भीतर सागर जहां तरंगे नहीं निस्तरंग है, वहां से ही सारी गति है, वहां से ही सारा होना, हमारा व्यक्तित्व भीतर से फैलता हुआ है, हम निरंतर भीतर से फैलते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा बीज हम बोते फिर वो अंकुरित होता है, बड़ा वृक्ष होता चला जाता है, एक छोटा सा बीज भीतर से बाहर की तरफ फैलता है, फैलता है, फैलता चला जाता है। माँ के पेट में एक छोटा सा अणु आता है जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, फिर वो अणु फैलता है, फैलता है, फैलता है और एक व्यक्ति निर्मित हो जाता है। सब भीतर से बाहर की तरफ फैलता है। अभी वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम खोज की है, वो बहुत महत्वपूर्ण, वह है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की। पहले हम सोचते थे कि जगत जैसा है वैसा ही है, वही है, ठहरा हुआ है, लेकिन नवीनतम अनुभव ने बड़ी हैरानी कर दी, जगत फैल रहा है, जैसे कि कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो और गुब्बारा बड़ा होता जा रहा और फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो, जगत फैल रहा है और प्रतिपल करोड़ों मील की रफ्तार से तारे दूर भागे जा रहे हैं, परिधि की तरफ फैलते जा रहे हैं, केंद्र से हटते जा रहे हैं। जगत जो है एक्सपेंडिंग, आज से 2 करोड़ पहले जगत छोटा, तारे करीब करीब, आज जगत बड़ा, कल और बड़ा हो और अंतहीन फैलाव है। हमारे पास एक शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म बहुत कीमती शब्द, आज नहीं कल विज्ञान को इस शब्द को स्वीकार कर लेना होगा। इसको इसलिए स्वीकार कर लेना होगा कि ब्रह्म का मतलब होता है दी एक्सपेंडिंग, जो फैल रहा है, फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। ब्रह्म का मतलब होता है जो विस्तीर्ण हो रहा है, जो फैलता जा रहा है, जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं है, जो कहीं रुकेगा नहीं, जो फैलता ही चला जाए। इस बात को समझा जा सकता है कि कभी सारा जगत जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट में एक अणु होता है और एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का जरा सा बीज होता है, आशी नहीं निश्चित ही ऐसा हुआ होगा, कभी ये सारा इतना बड़ा जगत एक छोटा सा बीज रहा होगा, फैलता गया, फैलता गया, आज इतना बड़ा, कल और बड़ा, कल और बड़ा, भीतर से बाहर की तरफ फैलाव, भीतर से शक्ति के स्रोत है वे फूटते जाते और बाहर की तरफ फैलते जाते। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक भूल हो जाती है और वो भूल ये हो जाती है, हम बाहर को देखते हैं और सोचते हैं कि बाहर से भीतर की तरफ चले। कर्म योग बाहर से भीतर तरफ चलने की भ्रांति है। कर्मयोग की मान्यता यह है कि कुछ करो, करोगे तो हो सकोगे। कर्मयोगी कहता है बैठ मत जाना, विश्राम मत करना, बैठ जाओगे विश्राम करोगे पहुंच ना सकोगे, कुछ करो और ठीक करो, क्योंकि गलत किया तो भटक जाओ। इसलिए कर्मयोग गहरे में शुभ और अशुभ का चुनाव, एक चॉइस, ये है ठीक, ये है गलत। गलत को छोड़ो और ठीक को करो, गलत को छोड़ते जाओ और ठीक को करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि गलत छूट जाएगा और ठीक ही ठीक शेष रह जाएगा। जिस दिन ठीक ही ठीक शेष रह जाएगा उसी दिन परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा कर्मयोग मानता है। ये मानना बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत इसलिए है कि इसमें बहुत से इम्प्लीकेशन है, बहुत सी छिपी हुई बातें हैं, वो खोल के समझ लेनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि क्या है शुभ क्या है अशुभ। जब तक किसी ने स्वयं को नहीं जाना तब तक वो ये जान ही नहीं सकता कि क्या है शुभ और क्या है अशुभ। असंभव है जानना। शुभ क्या है, किस चीज को ठीक कहें। महावीर कहते हैं चींटी ना मर जाए, चींटी मर गई बहुत अशुभ हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बेफिक्री से मार, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, तू मारेगा भी तो भी कोई मरने वाला नहीं। क्या है शुभ, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार, बेफिक्री से मार, कोई चिंता ही मत कर, क्योंकि कभी कोई मरता ही नहीं है, आत्मा अमर। तू तलवार चला, कुछ कटता ही नहीं। शस्त्र से कटता ही नहीं है कुछ, तू काट, तू भ्रम छोड़ दे कि कोई मरता है, कोई मरता ही नहीं, आत्मा अमर है। महावीर कहते हैं फूंक कर पैर रखना, चींटी न दब जाए, हिंसा न हो जाए, अन्यथा पाप हो जाए। क्या है सुख, महावीर कहते हैं वो शुभ है कि कृष्ण कहते हैं वो शुभ। महावीर के मानने वालों ने कृष्ण को नरक में डाल रखा इसी शुभ अशुभ की झंझट की वजह से, क्योंकि कृष्ण तो बड़ी अशुभ बात करते हैं। वो कह रहे हैं काटो, महाभारत शायद बच भी जाता, अर्जुन अगर भाग जाता और सन्यासी हो जाता, होने की स्थिति पैदा हो गई थी, भागने की तैयारी पूरी थी, लेकिन कृष्ण ने कहा कहां भाग कर जाए। महावीर को मानने वाले ने कृष्ण को डाल दिया नरक में, इस कल्प में नरक से उनका छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं ने इतनी हिंसा करवा दी। लेकिन कृष्ण को मानने वाला कहता है कृष्ण से पूर्ण अवतार कभी भी नहीं हुआ, कौन है शुभ कौन है अशुभ। नहीं, कर्म की परिधि पर तय ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आत्मा की परिधि पर महावीर पहुंच गए और कृष्ण भी पहुंच गए तो फिर ये फर्क क्यों, अगर वे आत्मा में पहुंच गए होने में पहुंच गए तो फिर ये फर्क क्यों है। जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन आप पाएंगे फर्क नहीं है, वे दोनों एक ही बात को दो तरफ से कह रहे हैं। महावीर कहते हैं पैर फूंक कर रख कि चींटी ना दब जाए। महावीर भी जानते हैं कि कुछ भी नहीं मरेगा, चींटी भी नहीं मरेगी, कुछ मरने वाला नहीं है, आत्मा अमर है, ऐसे वे भी जानते हैं। फिर वे कहते हैं मार मत। वे क्यों कहते हैं, वे इसलिए कहते हैं मरेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन तेरा ये ख्याल कि मैंने मारा बहुत कठिनाई में डाल दिया, मरेगा तो कुछ भी नहीं, सवाल मरने का है ही नहीं, सवाल तेरे इस ख्याल का है कि मैंने मार डाला, ये ख्याल तुझे दिक्कत में डाल दिया, तुझे तो पता नहीं है कि कुछ भी नहीं मरेगा। वे एक छोर से बात कर रहे हैं, जिनसे वे बात कर रहे हैं वे उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो मारने में उत्सुक है, वे अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं जो न मारने में उत्सुक हो गया है। महावीर उनसे बात कर रहे हैं जो मारने में उत्सुक, जो चाहते हैं कि कोई समझा दे कि कुछ भी नहीं मरता तो अच्छी तरह मारो। महावीर उनसे बोल रहे हैं जो मारने में उत्सुक है, तो महावीर कहते हैं भूख कर पैर रख लिया, क्योंकि तेरी जो मारने की उत्सुकता है वो तुझे दिक्कत में डाल देगी, मरेगा कुछ भी नहीं, लेकिन तूने मारा ये ख्याल तेरे लिए उपद्रव का कारण हो जाए। कृष्ण बिल्कुल दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं, वो उस आदमी से बात कर रहे हैं जो न मारने में उत्सुक हो गया, जो कहता मैं न मारूंगा, और क्यों उत्सुक हो गया, वो कहता है कि मारने से पाप लग जाए। महावीर जिसको समझा रहे हैं वो गलत ख्याल उसका ये है कि मैंने मारा, मैं मार रहा हूं, ये उसका गलत ख्याल है। कृष्ण का गलत ख्याल ये है कि कोई मर जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा, उसका ये ख्याल नहीं कि मेरे मारने से पाप लग जाएगा, उसका ख्याल है कोई मर जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा। कृष्ण उससे कहते हैं कोई मरता नहीं, तू बेफिक्री से मार। ये दोनों आदमी एक ही बात कहते हैं, ये दोनों अलग बातें नहीं कहते, लेकिन परिधि पर देखने से ये बातें इतनी अलग हैं जितनी हो सकती, इनके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। असल में अगर हम एक बिंदु रखें और बिंदु पर पड़ताल रख के वृत्त खींचे, एक सर्किल बनाए, सर्किल पर 50 बिंदु बनाकर बीच के बिंदु की तरफ रेखाएं खींचे, तो परिधि पर दो रेखाओं में फासला होगा और जैसे जैसे केंद्र की तरफ चलने लगेंगी फासला कम होने लगेगा, और जब दो रेखाएं जो कि परिधि पर बहुत दूर दूर थी जब केंद्र पर आएंगी तो एक ही बिंदु पर खड़ी हो जाएंगी। जो लोग बीम पर पहुंचे हैं, जिन लोगों ने आत्मा को जाना हो, कोई फर्क नहीं रह जाता, लेकिन परिधि पर बहुत फर्क है। और चूंकि सारे धर्म परिधि को देखकर बने हैं, इसलिए धर्मों में फर्क है। अगर किसी दिन आत्मा को देखकर धर्म का जन्म होगा तो दुनिया में एक ही धर्म हो सकता, बहुत धर्म नहीं हो सकता। लेकिन मोहम्मद की परिधि अलग है, महावीर की परिधि अलग है, कृष्ण की परिधि अलग है, होगी ही, हर लहर अलग होगी, एक ही सागर पर उठने वाली भी दो लहरें एक जैसी नहीं होंगी, सब लहरें अलग होंगी, लहरें अलग होंगी ही, लेकिन नीचे लहरों के एक ही सागर, और वहां हमारी ध्यान नहीं जाता, फिर हम लहरों को पकड़ के चलना शुरू करते हैं। कोई महावीर का आचरण देख के चलता है तो जैन हो गया, कोई बुद्ध का आचरण देख के चलता है तो बुद्ध हो गया, कोई कृष्ण का आचरण देख के चलता है तो हिंदू है, कोई किसी जीसस का आचरण देख के चलता है तो ईसाई है। सब आचरण को देखकर चलने वाले लोगों के बनाए हुए धर्म, सारी दुनिया में कर्मवाद है, कर्म को देखकर हम चल रहे हैं, इसलिए इतना उपद्रव। शुभ और अशुभ का निर्णय कैसे करिएगा, कैसे जानिएगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ, नहीं जान सकते। जिसने अभी अपने को ही नहीं जाना वो नहीं जान सकता कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, लेकिन कर्मयोग कहता है कि शुभ और अशुभ को देखकर चलो। कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ? कबीर के घर बहुत लोग इकट्ठे हो, और कबीर जब लोग जाने लगते सुबह, भजन कीर्तन समाप्त होता, मिलना जुलना बंद होता, तो कबीर कहते भोजन करके जाना। कबीर का लड़का परेशान हो गया, क्योंकि कहां से लाए इतना, कभी 200 लोग भी इकट्ठे होते, कभी 500 लोग भी इकट्ठे होते, इन सबको भोजन कहां से करवाया रोज रोज। कबीर जी ने बहुत बार कहा कि देखे अब कल ये मत कहना लोगों से, जाते वक्त की भोजन कर दो, क्योंकि मैं कहां से लाऊं इतना, ये कैसे इंतजाम करूं, हम गरीब आदमी हैं, आप भूल क्यों जाते। कबीर बार बार भूल जाते, क्योंकि जिसको भीतर की संपत्ति देते हो उसको गरीबी का ख्याल नहीं रह जाता, रोज भूल जाते। बेटा रोज शांत गगन पकड़ लेता है कि तुम आदमी कैसे हो, हम गरीब आदमी हैं, भूखे मर रहे हैं, हम कहां से लोगों को खिला दे। कर्ज हुआ जाता है, लोगों से मांग मांग के परेशान हो गए, अब गांव में कोई देने को भी तैयार नहीं। कभी कोशिश करो, वो कोशिश खत्म हो जाती। सुबह जब लोग आते कभी कहते कहां चले, भोजन तो करते जाओ। तो जिसको भीतर की संपत्ति दिख गई उसको बाहर की दरिद्रता को याद रखना मुश्किल हो जाता, कितनी कोशिश करे छूट छूट जाती। और जिसको भीतर की संपदा नहीं मिली उसको बाहर की कितनी ही संपदा मिल जाए उसे दरिद्रता नहीं मिलती, वो भीतर का दरिद्र कहते रहता है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ मिले क्या है, अभी तो और मिल रहा है, वो भीतर आदमी दरिद्र बना रहा है। बाहर की संपत्ति दरिद्रता नहीं मिटा पाती, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है जितनी संपत्ति उतना दरिद्र आदमी, उतना भीतर दीन ही। आखिर एक दिन उसके लड़के ने रात को कबीर को कहा कि अब बहुत हो गया, ये अंतिम अंतिम अल्टीमेटम जिसको कहे, उसने कहा यह आखिरी आखिरी निर्णय हो जाना चाहिए, कल से इस घर में मैं नहीं रहूंगा, क्या मैं चोरी करने लगूं? उसने तो क्रोध में कहा था कि कबीर को कुछ बुद्धि आ जाए, लेकिन जो बुद्धि के बाहर चले गए वो बड़े निर्बुद्धि हो जाते। एक तो बुद्धि के नीचे जो रहते हैं वो भी निर्बुद्धि रहते हैं, बुद्धि के ऊपर जो चले जाते हैं वो भी निर्बुद्धि हो जाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन करीब करीब एक से होता है, एकदम से पहचानना मुश्किल। कबीर ने कहा मूर्ख तुझे पहले क्यों ना सूझा, अरे चोरी करनी थी तो मुझे इतने दिन से परेशान क्यों कर रहा, कर ले। लड़का तो बहुत चौंका, उसने कहा आप ये कह रहे हैं कि चोरी कर लो, आप ये कह रहे हैं, शुभ अशुभ का कोई ख्याल नहीं, चोरी अशुभ है। कबीर ने कहा चोरी अशुभ, वो आंख बंद करके वो सोचने लगे, कहने लगे कुछ समझ में नहीं आता। तो लड़के ने कहा कि परीक्षा पूरी ही कर लेनी चाहिए, तो उसने कहा उठिए फिर मैं ही क्यों चोरी करूं, आप भी साथ चलिए। कबीर ने कहा चलता हूं, लेकिन देख ज्यादा सामान मेरे ऊपर मत लाते, बुरा आदमी। कबीर पीछे बेटा आ गए कि चोरी करने गए। लड़के ने भी बड़ी हिम्मत की, कमाल उनका लड़का बहुत हिम्मतवर था, उसने कहा आखिरी क्षण तक देख ही लेना चाहिए, आदमी क्या क्या बात कह रहा है, इसको सुबह सुबह का भी बोध नहीं है। संग लगाई, दीवार तोड़ डाली, कबीर से कहा क्या इरादा है? कबीर ने कहा घुसो। सोचा कि क्या चोरी करनी ही पड़ेगी, लड़का भीतर घुस गया। एक बोरा गेहूं खींच कर लाया, कबीर से कहा सहायता करिए, कबीर ने सहायता की। लड़के ने कहा क्या इरादा है, ले चले घर? कबीर ने कहा इतनी मेहनत किस लिए की, लेकिन घर के लोगों को बता आए ना। कबीर ने कहा घर के लोगों को बता रहे ना, उस लड़के ने सिर ठोक लिया, उसने कहा चोरी कर रहे हैं, कोई घर के लोगों को बताने की बात? कबीर ने कहा नहीं ये ठीक नहीं मालूम पड़ता, घर के लोगों को कहाओ कि हम चोरी कर रहे हैं, एक गेहूं का बोरा ले जा रहे। तो उस लड़के ने कहा ये कैसी चोरी, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि चोरी बुरी चीज है? कबीर ने कहा कि अब मैं सोचता हूं कि जब तुम नहीं कह आए घर के लोगों से तो कुछ गड़बड़ बात हो गई, लेकिन मुझे इसलिए भूल हो गई कि बहुत दिन से अपने पराये का भेद नहीं रहा, तो मेरी समझ में नहीं आया कि चोरी किसकी, चोरी किसकी, कौन करेगा और किसकी होगी, सभी उसका है, हम भी उसके हैं, वो भी उसके हैं, सामान भी उसका है, सब परमात्मा का है। नहीं नहीं लेकिन खबर करके आओ, खबर तो कर दो, क्योंकि वो चाहे सुबह खोजें घर में और बोरा न मिले तो तकलीफ में पड़े, कहां खोजेंगे? लड़के ने कहा हो गई चोरी, वापस चलिए, ऐसी चोरी नहीं होती, अगर खबर ही करनी है तो घर वापस चलिए। ये जो कबीर है, क्या है शुभ क्या है अशुभ, वो ये कह रहा है कि सब उसका, कैसी चोरी, अपने पराये का भेद ना रहा, कैसी चोरी, चोरी के लिए अपने पराये का भेद होना तो जरूरी है। संपत्ति किसी की है, मेरी नहीं है, जिसको ये बोध है उसको ये भी बोध होगा कि ये संपत्ति मेरी है किसी की नहीं है, जिसको ये बोध है कि किसी की चोरी ना करूं उसको ये भी बोध होगा कि मेरी कोई चोरी ना कर ले। लेकिन एक जगह है जहां संपत्ति किसकी नहीं रह गई, जहां हम ही नहीं रह गए, जहां सब उसी का रह गया, वहां क्या हो, कैसे तय करिएगा शुभ क्या है अशुभ क्या है? शुभ और अशुभ का निर्णय परिधि पर नहीं हो सकता है, गहरे में होगा। मैं मानता हूं कि कबीर का बेटा जब कह रहा था कि चोरी अशुभ है, तब वो इसीलिए कह रहा था कि संपत्ति की मालकियत को मानता था, अभी अहंकार जिंदा था और अहंकार अशुभ, चोरी अशुभ नहीं, अहंकार की वजह से चोरी अशुभ मालूम हो गई। और कबीर का अहंकार खो गया, उनको पता नहीं चलता कौन किसका है, क्या कौन है, ये आदमी अशुभ है। क्या आप कहेंगे कबीर का चोरी करने जाना अशुभ था? मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि कबीर चोरी को गया ही नहीं। क्योंकि चोरी को तो तभी जाया जा सकता है जब संपत्ति किसी की हो और अहंकार में हमने जगत को बांटा हो। कबीर चोरी को गया नहीं, कबीर किसी दूसरी दिशा में यात्रा कर रहा है, बेटा किसी और दिशा में यात्रा कर रहा है। वे दोनों साथ गए ही नहीं, साथ दिखाई पड़े। कर्म की दुनिया में इसलिए दिक्कत हो जाती है, साथ गए नहीं, वो कहीं और जा रहा था, वो भगवान के घर ही जा रहा था। जैसे ये घर है वैसा वो घर, उधर से उठा लाओ, लेकिन घर में जो लोग पहरा देते उनको खबर कर दो, चोरी कर ले जाते हैं। कबीर चोरी करने गया ही नहीं, सिर्फ बेटा ही चोरी करने गया, और बेटा को शुभ और अशुभ का बोध है और कबीर को बोध नहीं। परिधि पर जो निर्णय करेंगे, कैसे निर्णय करिएगा? अगर हम सारे जगत में नीति के शुभ अशुभ के भेद देखें तो बहुत हैरान हो जाएंगे। जो यहाँ शुभ हो वो 50 मील बाद में अशुभ हो सकता है, जो 50 मील दूर अशुभ हो यहाँ शुभ हो सकता है। मेरे एक प्रोफेसर पेशावर में प्रोफेसर थे, विभाजन के पहले वो पेशावर थे। एक दिन मैं उनसे बात करता था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो कहते हो शायद एक घटना मेरे जीवन में घटी, उससे तुम्हारी बात ठीक लगती। मैं पेशावर में था और मेरे पास पहली दफे एक पख्तून लड़का ग्रेजुएट हुआ। मैंने ही मेहनत करके उस पख्तून को पढ़ाया, वो पख्तूनों में पहला ग्रेजुएट, पहला स्नातक। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ पाया, थर्ड क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन पख्तूनों में बड़ी खुशी फैल गई। जिस दिन उसके पास होने की खबर आई तो 8-10 पख्तून सरदार बुढ़े, बड़े भोले और सरल लोग नंगी तलवारें लेके मेरे पास आए। मैं तो डर, ये क्या मामला? उन्होंने आके तलवारें मेरे सामने रख दी और मेरे पैर छुए और कहा कि आपका कोई दुश्मन हो तो नाम बता। मेरे दुश्मन का क्या करिएगा? उन्होंने कहा हम गरीब पख्तून और क्या सेवा कर सकते, गर्दन काट के ला दें। आपने बड़ी कृपा की, हमारा पहला लड़का स्नातक हो गया विश्वविद्यालय। हम बड़े गरीब लोग हैं, हम और क्या कर सकते हैं? आप देर ना करिए, नाम लीजिए, सांझ होने के पहले गर्दन दरवाजे पे रखिए। और वो बड़े भोले लोग एकदम भोले लोग, बुरे लोग नहीं है। तो हम कहेंगे गर्दन काटने वाले लोग हैं बुरे ही लोग, इतने भोले लोग हैं। वो इतनी सरलता से पैर पकड़ के कहने लगे उनको कि नहीं नहीं, आप कृपा करके नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए, सांझ होने के पहले गर्दन दरवाजे पर। हम गरीब पख्तून और क्या कर सकते, हम कैसे धन्यवाद दें? उन्होंने कभी इतनी कृपा करना कि कभी मेरी गर्दन में उतार देना। तुम जाओ, कोई हमारा ऐसा दुश्मन नहीं जिसकी गर्दन कटवानी। लेकिन वे बार बार आते रहे, वे कई बार आए कि आप मालूम होता हम पर खुश नहीं, आप नाम तो बता दें। नाम ही पर बताने की जरूरत है, बाकी हम सब कर लेंगे, कुछ देर ना लगे। वो मुझसे कहते थे उनकी आंखों में देखता हूं तो बड़े सरल लोग, वो जो कह रहे हैं कि गर्दन काटना है बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती है, लेकिन पख्तून में गर्दन काटना अशुभ नहीं है, गर्दन कटवा देना अशुभ नहीं है, गर्दन काटने से भागना या कटवाने से भागना अशुभ। ऐसी कौन है सारी जमीन पर कि अगर हम उनके शुभ अशुभ का निर्णय करने जाएं तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो हिमालय के पास ऐसे ढेर आदिवासी कबीले थे कि उनके घर में अगर मेहमान हो तो वो सारी सेवा करेंगे और रात अपनी पत्नी भी दे देंगे, क्योंकि घर मेहमान आया है उसको पत्नी नहीं दीजिएगा। कैसा अतिथि सत्कार हो रहा है, तो अपनी पत्नी भी दे देंगे रात। बड़े सीधे लोग थे, अंग्रेज उनके घर जाकर ठहरने लगे क्योंकि उनकी सुंदर पत्नियों ने बहुत आकर्षित किया। अब पूछने जैसा है कि अशुभ कौन कर रहा, वे अशुभ कर रहे थे जो कि इतने भोले थे कि वो कहते थे जब घर में मेहमान आया तो रात उसे पत्नी की याद आए, स्त्री की याद आए, तो वो क्या करेगा, तो उसे हमारे घर मेहमान हुआ तो हमारी पत्नी मिलनी चाहिए, और पत्नी सरलता से रात उसके पास जाके सो जाए क्योंकि घर मेहमान आया देवता। ये गलत कर रहे थे, ये अशुभ कर रहे थे। या वो आदमी जो सिर्फ इसलिए घर में आकर मेहमान हो गया कि इसकी औरत पर नजर थी उसकी, इसलिए आकर घर में मेहमान हो गया, तो फिर धीरे धीरे उस कबीले को समझ लानी पड़ी, कबीला चालाक हुआ, कलिंग हुआ, फिर उसने कहा कि बात गलत, मेहमान को पत्नी देना गलत, ये अशुभ। लेकिन चालाक हुआ तब, चालाकी अशुभ है या उसका वो निर्दोष भाव अशुभ था, तय करना मुश्किल है। परिधि पर कुछ भी तय नहीं होता, परिधि पर कुछ भी तय नहीं हो सकता है। लेकिन कर्मवादी कहता है परिधि पर निर्णय कर लो, ये ठीक और ये गलत, और ठीक डिवीजन कर लो, कंपार्टमेंट बांध दो, दीवार खड़ी कर दो कि ये हम करेंगे और ये हम ना करेंगे। इसलिए कर्मवादी जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है इसलिए उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, व्यक्तित्व की जो तरलता है वो खो जाती है। सख्त, ये ठीक और ये गलत, बस वो ऐसा करेगा। लेकिन जिंदगी बहुत तरल है, उसमें ठीक जो सुबह ठीक था सांझ गलत हो जाता, जो सांझ गलत था वो सुबह ठीक हो जाता, जो घड़ी भर पहले ठीक था घड़ी भर बाद गलत हो जाता। इसलिए सवाल ठीक और गलत तय करने का नहीं, सवाल ठीक और गलत को हर स्थिति में पहचानने का। लेकिन वो कौन पहचानेगा, वो बीइंग पहचान सकता है, वो भीतर की आत्मा जागृत हो तो पहचान सकती क्या ठीक क्या गलत।
आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक में लाफ्टर ब्लूज फ्रॉम कल्याण, राम तजू फ्रॉम संजीवाज मिस्टिक पोएट एल्बम और म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से द ओशन एंड मिस्टिकल रोज टाइटल्स को सुना। साथ ही एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मोर लाफ्टर, मोर वंडर्स, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग।
न तो ज्ञान ले जाएगा, न भक्ति ले जाएगी, न कर्म ले जाएगा। ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों मन के ही खेल हैं। इन तीनों के पार जो जाएगा वही अमन, नो माइंड, वही आत्मा, वही परम सत्य उसकी अनुभूति ले जाती है। तब मुझसे मत पूछें कि मार्ग क्या है। सब मार्ग मन के हैं। मार्ग छोड़े, क्योंकि मन छोड़ना है। कर्म छोड़े, वो मन की बाहरी परिधि है। विचार छोड़े, वो मन की बीच की परिधि है। भाव छोड़े, वो मन की आखिरी परिधि है। तीनों परिधि को एक साथ छोड़े और उसे जान ले जो तीनों के पार है, द बियॉन्ड, जो सदा पीछे खड़ा है, पार खड़ा है। उसे जानते ही वो सब मिल जाता है जो मिलने योग है। उसे जानते ही वो सब जान लिया जाता है जो जानने योग है। उसे मिलने के बाद मिलने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उसे पाने के बाद कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। सब शास्त्र जिसके लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, सब ज्ञानी जिसकी तरफ इशारे उठाते हैं और इशारे नहीं हो पाते हैं, सब शब्द जिसे कहते हैं और नहीं कह पाते, सब आंखें जिसे तलाशती हैं और नहीं देख पाती, और सब हाथ जिसे टटोलते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं, वो इन तीनों के पास सदा मौजूद है। इन तीनों से जरा सा द्वार खुल जाए और वो उपलब्धि ही है। मार्ग नहीं है, क्योंकि वो दूर नहीं है, वो निकट है, निकटतम है, निकट से भी निकटतम है, वही है। मार्ग नहीं है, क्योंकि वो वहां नहीं है, यहां है। मार्ग नहीं है, क्योंकि वो कल नहीं है, अभी है। हियर एंड नाउ, अभी और यही। इसलिए मार्ग में मत भटके, सब मार्ग भटकाते हैं। सब मार्ग छोड़ दे, खड़े हो जाए एक सेकंड को ही। सिर्फ खड़े होने का प्रयास करते रहे, भाव का, विचार का, कर्म का, तीनों के ऊपर उठने का प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे। आपके करने से ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे आप उठते जाएंगे, ना, करते रहे। नहीं उठेंगे तब तक नहीं उठेंगे, लेकिन करते 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 कभी कभी वो ट्यूनिंग पॉइंट आ जाएगा कि तीनों चीजें एक सेकंड को ठहर जाएंगी और आप अचानक पाएंगे कि आप उठ गए। 99 डिग्री तक भी पानी भाप नहीं बनता, बस कुनकुना गर्म होता है, गर्म होता रहता होता है। 98 पे भी गर्म, 97 पे भी गर्म, 90 पे भी गर्म, 99 पे भी गर्म, 99.5 पे भी गर्म, गर्म ही होता है। बस ठीक 100 डिग्री पे पहुंचा कि एक सेकंड में सब बदल जाता है। पानी नदारद, पानी गया, भाप हो गई। ठीक ऐसे ही करते रहे, करते रहे, भाव के बाहर, विचार के बाहर, कर्म के बाहर, खोजते रहे, खोजते रहे। अनजान है वो क्षण कब आ जाए। किसी भी दिन अचानक आप पाएंगे 100 डिग्री पूरी हो गई, और अभी तक कोई थर्मामीटर नहीं है कि बाहर से बताया जा सके कि आपकी 100 डिग्री पूरी हो गई। नहीं, आगे भी आशा नहीं है कि कोई थर्मामीटर हो सके। आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि कब किस आदमी की 100 डिग्री पूरी हो जाए, किस क्षण में। और जिस क्षण पूरी हो जाएंगे उसी क्षण आप खो जाएंगे, और जो हो जाएगा वही सत्य है, वही परमात्मा। मनुष्य परमात्मा से नहीं मिल पाता। पानी कभी भाप से मिल पाता? पानी कैसे भाप से मिले? पानी जब मिटेगा तब भाप होगी, इसलिए पानी कभी भाप से नहीं मिलता, आदमी कभी परमात्मा से नहीं मिलता। आदमी तो भाप हो जाता है, मिट जाता है, तब जो रह जाता है वो परमात्मा। मिटे ताकि पा सके, खो जाए ताकि खोज सके, बीज मिटता है तो वृक्ष हो जाता, बूंद मिटती है तो सागर हो जाता। मेरी इन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुनो, उससे अनुग्रहित हो, परंतु मैं सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे ग्रह स्वीकार।